अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 5 है नॉवेल बेबाकों की तलाश। ये नॉवेल नाबीना ख्वातीनों हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। पेशकश करतबा ऑडियो लाइब्रेरी, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी, आवाज़ हुमा निहाल। मजीद कुतुब के लिए 0300-291-9600 और 0321-213-8225 पे रब्ता कीजिए। तो आइए सुनते हैं पार्ट 5। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा एक आदमी इस वक्त अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है। बचने की उम्मीद नहीं, पसलियों की कई हड्डियां टूट कर फेफड़ों में घुस गई हैं। भला ये कैसे हुआ, लंगड़े ने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर पूछा। खुदा जाने, लेकिन ये सिलसिला वही था। सिलसिला वही था, लंगड़े ने कहकर कहकहा लगाया। मोमर आदमी के चेहरे पर झुंझलाहट के आसार थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वो किसी वजह से इजहार ख्याल नहीं कर सकता। लंगड़ा हंसता ही रहा। आप क्या पियेंगे, बिलाखिर मोमर आदमी ने गालिबन उसकी ना रुकने वाली हंसी से उकता कर पूछा। उस आदमी का जामे सेहत जो सिविल अस्पताल में दम तोड़ रहा है। यार क्यों मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, मत यकीन कीजिए, लेकिन हमने जिस काम का बेड़ा उठाया है उसे तकमील तक पहुंचा कर भी दम लेंगे। मुझे जल्दी है, लंगड़े ने बहुत संजीदा होकर कहा। जल्द ही होगा, मेरा ख्याल है कि तरीके कार में कोई खामी रह जाने की बिना पर इतनी देर हुई है। लंगड़ा कुछ न बोला। मोमर आदमी ने वेटर को इशारे से बुलाकर कुछ कहा और वो मुअद्दबाना अंदाज में सर को जंबे देकर चला गया। खावर की नज़र अखबार पर जमी रही। थोड़ी देर बाद वेटर हाथों पर एक ट्रे उठाए हुए उनकी मेज के करीब आया। ट्रे में शैम्पेन की बोतल, सोडे का साइफन और 2 गिलास थे। मोमर आदमी ने बोतल की सील तोड़ते हुए लंगड़े से कहा, आपको कतई मुतमईन रहना चाहिए। यकीनन, लेकिन अगर इससे पहले ही कोई कामयाब हो गया तो उस पर भी हमारी नज़र है, हम कच्चा काम नहीं करते। अच्छा, अगर कोई कामयाब ही हो गया तो अंजुमन आपकी रकम पाई पाई का हिसाब करके वापस कर देगी। मुझे रकम नहीं चाहिए, लंगड़े ने किसी कदर गुस्से में कहा, और जो कुछ चाहो दे सकता हूँ। मुझे इल्म है जनाब, आपकी माली हैसियत किससे पोशीदा है, बस थोड़ा वक्त और दीजिए, मोमर आदमी ने कहा। लंगड़ा बुरा सा मुंह बनाए हुए दूसरी तरफ देखने लगा। मोमर आदमी ने गिलासों में थोड़ी थोड़ी उंडेली और यके बाद दीगरे उनमें सोडे की धार मारता रहा। खावर सोच रहा था, देखो इनमें से कब कौन उठता है। शहर के किसी ली हैसियत लंगड़े को ढूंढ निकालना मुश्किल काम ना होता, लेकिन अगर मोमर आदमी नजरों से ओझल हो जाता तो दोबारा सुराग मिलने में यकीनन दुश्वारी पेश आती। तकरीबन 1.25 घंटे तक उनका शुगल जारी रहा। फिर लंगड़ा उठ गया था, लेकिन मोमर आदमी जमा बैठा रहा। आधी बोतल से कुछ कम शराब बाकी बची थी। मोमर आदमी ने बोतल पर ढक्कन जमा कर उसे कोट की जेब में डाल लिया। खावर समझा शायद अब उठेगा, लेकिन वो तो कुर्सी की पुश्त से टिक कर फिर नया सिगार सुलगा रहा था। उसने सोचा अब खुद इसका मजीद बैठना दूसरों को शुभात की तरफ ले जा सकता है, लिहाजा उठना चाहिए। बाहर कहीं रुक कर उसकी आमद का मुंतजर रहेगा। उसने होटल से खरीदी हुई चीजें समेटी और अखबार को वहीं छोड़कर उठ गया। रात खुशगवार थी, सबीहा ने बरामदे के वो बल्ब रोशन कर दिए थे जिनसे लॉन पर भी रोशनी फैलती और खुद बरामदे में बैठी नए ड्राइवर को गौर से देख रही थी, जो सामने वाले रविश पर गाड़ी की सफाई कर रहा था। वो सोच रही थी, बेहद चालाक मालूम होता है, दोपहर ही से गाड़ी में लगे लगे रात कर दी, उसके घर वालों पर अपनी मुस्तैदी का सिक्का जमाना चाहता है। लेकिन ये हकीकतन कौन है? उसका बहरूपियापन मुतहयर कर देने वाला था। रात अख्तर बने थे, इस वक्त सूरत बदल कर रह गई है और पेशावर ड्राइवर मालूम हो रहा है। उसके चेहरे पर वो फूली हुई नाक और गुंजान मूछें कतई नकली नहीं लगती थीं। माँ से जब उसने उसकी मशाकी का तذکرہ किया था तो वो फौरन ही उसे मुलाजिमत देने पर आमादा हो गई थी और उस मक्कार ने भी खूब ही बातें मनाई थी। कहने लगा, ना पैसों की परवाह है और ना खाने की। ऐसी गुफ्तगू ना की जाए मुझसे कि मैं खुद को असली गुलाम महसूस करने लगूं। इज्जतदार घराने का आदमी हूँ, बस पढ़ने लिखने में जी नहीं लगता था, इसलिए ये दुर्गत बनी है। अगर आप हवाले चाहें तो बहुत बड़े बड़े आदमियों के हवाले दे सकता हूँ जिनके साथ रह चुका हूँ। और फिर उसने सबसे पहले होम सेक्रेटरी सर सुल्तान का हवाला देते हुए कहा था, उनसे पूछ लीजिए कि अब्दुल मन्नान कैसा ड्राइवर है और कैसा आदमी है। माँ इस हवाले पर काफी मरोब हुई थी और उन्होंने चाहा था कि तनख्वाह का मसला भी तय कर लें, लेकिन वो यही कहता रहा था, जो मुनासिब समझिएगा दे दीजिएगा, मुझे तो दो वक्त की रोटी और रहने को जगह चाहिए। फिर ये मामला बाप की वापसी तक के लिए टल गया था। वो सोचती और घूरती रही, जो एक नलकी को होठों में दबाकर फूंक रहा था। ए अब्दुल मन्नान, इधर आओ। दफातन सबीहा ने उसे मुखातिब किया और वो किसी पालतू कुत्ते की तरह उसकी तरफ चला आया। अब खत्म भी करो ये खड़ाक, या नहीं करोगे? उसने किसी कदर झुल्ला कर कहा, बीबी जी हम क्या करें? वो आस्तीन से नाक घिसता हुआ बोला, पिछले ड्राइवर ने बड़ा कबाड़ कर रखा है, सेल्फ का बुश बिल्कुल खल्लास हो चुका है, नया बुश नहीं पड़ता तो हैंडल बाजी करनी पड़ेगी। अरे तो तुम मिस्त्री भी हो? हाँ हाँ बीबी जी, अब ये गाड़ी किसी वर्कशॉप में नहीं जाएगी। कमाल के आदमी हो भाई। अरे हम क्या, हमारा बाप तो आंखों पर पट्टी बांध कर इंजन ओवरहॉल करता था। हाँ, ऐसी ही बात होगी, सबीहा ने ऊंची आवाज में कहा और फिर आहिस्ता से बोली, मैंने सुना है उसकी हालत बहुत खराब है, मरने दो। उसने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर उसने पुलिस को बयान दे दिया तो देखा जाएगा, उसने मुझे उस हुलिये में नहीं देखा था, मुझे तो देखा था। क्या वो ये ना समझ गया होगा कि तुम मेरे ही साथ आए थे? समझने दो। अरे मेरी बदनामी, बदनामी? वो तंजिया लहजे में बोला, बदनामी की परवाह होती तो तुम किसी अख्तर का बखेड़ा करती। अरे अपना लहजा ठीक करो अब्दुल मन्नान। बहुत बेहतर मिस साहब, तुम आखिर हो क्या भला? ड्राइवर मिस साहब, फिलहाल मैं सोचती हूँ कहीं तुम हम लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना करो। बस सोचती रहिए उस वक्त तक जब तक कि मैं कोई फ्रॉड ना कर बैठूं। क्या मतलब? आप बस मतलब ही सोचती रह जाइएगा। ओह वो देखिए, कोई मेम साहबा आ रही हैं। सबीहा चौंक कर फाटक की तरफ मुड़ी। फाटक पर कोई सफेद फार्म औरत थी, सफेद ब्लाउज और नारंगी स्कर्ट में मलबूस थी। वो बरामदे की तरफ बढ़ती रही, कुछ और करीब आई तो सबीहा ने उसे पहचान लिया। अक्सर रेड क्रॉस के वैरायटी प्रोग्रामों के सिलसिले में पहले भी उससे मुलाकात हो चुकी थी। रीटा जिब्राइल नाम था। रेड क्रॉस तंजीम के हमदर्दों में से थी और उसके लिए फंड इकट्ठा करने में कारकुनों को मदद देती थी। सबीहा ने उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले आसार देखे। हेलो सबीहा, ये तुम हो? वो करीब पहुंच कर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाती हुई चहकी। क्या मालूम था कि इस तरह मुलाकात होगी। आओ आओ बैठो। जरूर बैठूंगी, बहुत थक गई हूँ, वो कुर्सी खींच कर बैठती हुई बोली। दोपहर से इन अतराफ के चक्कर लग रहे हैं। क्यों? अरे वही मिसेज ऑर्थर का चक्कर है, रेड क्रॉस वाला। फंड जमा करने निकले हैं। कॉफी पियोगी या चाय? कुछ भी नहीं। तुम तो ये बताओ कि कितना दे रही हो। कॉफी पियो, वो फिर सोचेंगे, सबीहा ने कहा और ड्राइवर को मुखातिब करके कहा, कॉफी के लिए कह दो। जी अच्छा, ड्राइवर ने सर हिलाकर कहा और चला गया। कहो कैसी गुजर रही है? रीटा ने पूछा। कोई खास नहीं, यहाँ बोरियत के अलावा रखा ही क्या है। क्यों, क्या अब ड्राइविंग नहीं करती? शायद एक बार तुमने बताया था कि अक्सर सुबह ही सुबह दूर तक तन्हा निकल जाती हो। वो तो हाँ, बहुत दिनों से ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, तबीहा ने किसी कदर परेशानी के साथ कहा, क्योंकि अचानक आज का वाकया फिर याद आ गया था। जरूर जाया करो, इस किस्म की तब्दीलियां सेहत के लिए मुफीद हैं। अब तो वक्त ही नहीं मिलता, कहो तो मैं भी साथ चला करूं। मुश्किल है, पापा ने पाबंदी लगा दी है। फिर अब ड्राइवर को कौन साथ बिठाए फिरे? मुझे अपने पापा से मिलाओ, शायद मैं उनसे कुछ ज्यादा वसूल कर सकूं। वो तो पिछले हफ्ते दौरे पर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। ओह, तब तो आजादी है। चलो कल सुबह चलेंगे। और मम्मी जो हैं, वो क्या करेंगी? पापा से कई गुना ज्यादा खूंखार हैं। उनसे मिलाओ, इस वक्त तो मुश्किल है, वो इबादत कर रही होंगी। बहुत डरती हो वालदेन से? डरना ही चाहिए, वालदेन का खौफ हमारे कल्चर का जुजू लाजिम है। बनो मत, तुम आज ही गाड़ी लेकर हसबे आदत वीराने की तरफ निकल गई होगी, क्योंकि मैदान साफ था। हम लोग वालिदैन को धोखा देना बुरा समझते हैं। अच्छा, नहीं गई थी क्या? हरगिज नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। कबल इसके कि सबीहा कुछ कहती, ड्राइवर की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी, जो कह रहा था, पागल हो गया है, कह रहा है हरगिज ना बनाऊंगा कॉफी, पीना हो तो चाय पिए। क्या मतलब? मतलब भी उसी से पूछिएगा, मैं क्या जानू। ठहरो, मैं देखती हूँ, सबीहा ने कहा और रीटा से अंग्रेजी में बोली, ठहरो मैं अभी आई। वो तेजी से सदर दरवाजे से गुजर गई, फिर कुछ किचन की तरफ बढ़ रही थी फिर ड्राइवर की आवाज़ सुनकर रुक जाना पड़ा। ख्वामखा बावर्ची पर ना उलट पड़ना, मैं तुम्हें वहां से हटाकर एक बात कहना चाहता था। तुम आदमी हो या घनचक्कर? सबीहा को ताव आ गया। सुन लो मेरी बात, वरना किसी मुसीबत में फंस जाओगी। वो शैतान की खाला तुमसे सिर्फ ये मालूम करने आई है कि तुमने आज सुबह ड्राइविंग की थी या नहीं। तुम क्या जानो, हम अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे थे, फ्रांसीसी और जर्मन में भी करके देख लो। अगर ना समझ लूं तो मूछें उखाड़ लेना। क्या समझती हो? हाँ, वो क्यों एतराफ कराना चाहती है? बताता हूँ, पहले तुम ये बताओ कि उसे कब से जानती हो। अरसे से जानती हूँ, लेकिन वो मेरे घर पहली बार आई है, आज भी ना आती अगर वो वाकया पेश ना आता। तो क्या उसका ताल्लुक खुफिया पुलिस से भी हो सकता है? मैं तो यही समझता हूँ। फिर मुझे क्या करना चाहिए? हरगिज एतराफ न करना कि तुम आज सुबह गाड़ी लेकर गई थी और कॉफी तैयार हो रही है। बस अब जाओ। बावर्ची तो किसी फरिश्ते की औलाद मालूम होता है, तो तुम महज बताने के लिए मुझे इधर लाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब जाओ। मैं कुछ देर तुम्हारी नानी अम्मा को सन 1857 के गदर पर कमेंट्री सुनाऊंगा। सबिया सोच में डूबी हुई फिर वहीं वापस आ गई जहां रीटा उसकी मुंतजिर थी। कितने की रसीद काटूं? रीटा ने वैनिटी बैग से रसीद बुक निकालते हुए पूछा। पैसे लेने नहीं गई थी, मेरा बावर्ची सख्त नालायक और कामचोर है। उसने कॉफी तैयार करने से इनकार कर दिया था, कह रहा था कि रात को कॉफी पीने से मलेरिया हो जाता है। क्या उस गंदी मूंछियों वाले ने यही इत्तला दी थी? हाँ, वो भी तुम्हारा कोई मुलाजिम है? हाँ, ड्राइवर है। मैं तो ऐसी गंदी मूंछ वाले को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना कर सकूं। पसंद अपनी अपनी, मुझे उसकी मूंछें ही तो अच्छी लगती हैं। खैर, कितना दे रही हो? 10 रुपए लिख लो। पापा की वापसी से पहले मेरी जाती माली हालत बेहतर नहीं हो सकेगी। अच्छी बात है, रीटा ने कहा और रसीद बुक पर कुछ लिखने लगी। फिर रसीद फाड़ कर उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली, मेरा ख्याल है कि सुबह की सैर में कभी न कभी मेरा और तुम्हारा साथ जरूर होगा। सबीहा कुछ न बोली। अब तो सचमुच उसे सोचना पड़ा था कि आखिर वो सुबह की सैर के पीछे क्यों पड़ गई है। अच्छा, तो फिर रीटा उठती हुई बोली, बैठो बैठो, कॉफी पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बहुत काम करना है सबीहा, फिक्र ना करो, काम तो होते ही रहते हैं। वो फिर कुछ कहने वाली थी कि एक मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ आ गया। सबीहा ने रीटा के लिए कॉफी उंडेली, लेकिन उसकी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। वो कनखियों से रीटा की तरफ देखती और कॉफी की चुस्कियां लेती रही। सोच रही थी कि क्या वो सचमुच खुफिया पुलिस से ताल्लुक रखती है? अगर ऐसा नहीं है तो आज ही यहाँ क्यों आन मरी? पहले क्यों नहीं आई थी? मुतअद्दिद बार इस इलाके से रेड क्रॉस के लिए फंड इकट्ठा किया गया था। खुदा खुदा करके कॉफी खत्म हुई और रीटा रुखसत भी हो गई, लेकिन सबीहा वहीं बैठी रही। उसके चेहरे पर पसीने की नन्नी नन्नी बूंदें फूट रही थी। नया ड्राइवर गाड़ी गैराज में बंद करके थोड़ी देर बाद उधर से गुजरा। सबीहा ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। वो करीब आ गया। मैं बहुत परेशान हूँ अख्तर, सबीहा रुमाल से चेहरे का पसीना खुश्क करती हुई बोली, मुझसे ज्यादा ना होगी। ओह, तो अब तुम्हें परेशानी है? बिल्कुल, तुम्हारी नानी मुझे जिंदा ना रहने देंगी। कहने लगी, ये निगोड़ मारी मूछें काफिरों की सी हैं, मुसलमानों को तो लब जरूर कतरवानी चाहिए। बस इसी की परेशानी? सबीहा हैरत से बोली, और क्या, लब कतरवाने बैठा तो नाक से भी हाथ धोट बैठूंगा। अरे इसकी फिक्र नहीं, वो जो पता नहीं जिंदा भी हो या मर गया हो। नहीं, ड्राइवर ने उसीले लहजे में कहा, वो लड़की रीटा सचमुच खुफिया पुलिस ही की मालूम होती है। बार बार मुझसे एतराफ कराने की कोशिश कर रही थी कि आज मैं वीराने की तरफ गई थी या नहीं। फिर तुमने क्या कहा? उस पर अड़ी रही कि ये आदत अरसा हुआ तर्क कर चुकी हूँ। चलो बस ठीक है, लेकिन आज सुबह मुझे घर से निकलते बहुत लोगों ने देखा होगा। परवाह मत करो, महज इतनी सी चीज तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर नहीं पेश की जा सकती। बस अपनी जबान बंद रखो। अच्छा खैर, तुम अपना सामान स्टेशन से लाए या नहीं? मौका कहाँ मिला, कहो तो अब चला जाऊं? जरूर जाओ, वरना आज फिर झुलंगे ही पर सोना पड़ेगा तुम्हें। बिस्तर का इंतजाम नहीं किया जा सकता। खावर सोने की तैयारी कर रहा था। देर तक नौमानी का मुंतजर रहने के बाद उसने महसूस किया था कि अब शायद बैठे ही बैठे नींद आ जाए। फिर वो लेटा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उठकर दरवाजा खोला, आने वाला नौमानी ही था। उसकी आंखों से थकन जाहिर हो रही थी। आते ही जूतों समेत बिस्तर पर ढेर हो गया। क्या हुआ? खावर ने पूछा। यार, थका डाला उस कंबख्त ने। पैदल चलकर रेड क्रॉस के लिए चंदा इकट्ठा शुरू कर दिया, लिहाजा मैं इसका अंदाजा ही ना कर सका कि उसकी मंजिले मकसूद कहाँ थी। तकरीबन 1.5 दर्जन बंगलों और कोठियों में घुसी थी, लिहाजा अंदाजा करना मुश्किल है कि वो किस लड़की का किस्सा था। अलबत्ता एक बात है। क्या? जरा जल्दी से ये कहानी खत्म करो, मुझे नींद आ रही है। एक बंगले में मुझे इमरान भी नजर आया था। अपने रेडीमेड मेकअप में था, यानी झुकी हुई मूछें और फूली हुई नाक प्लास्टिक वाली। तब फिर यकीन कर लो कि वो बंगला मंजिले मकसूद थी। कौन रहता है वहाँ? ताहिर सिद्दीकी, सिटी डिप्टी कलेक्टर। तुमने क्या किया? नौमानी ने पूछा। वो मुअम्मर आदमी यहाँ एक कामयाब तरीन एडवोकेट है, उससे ज्यादा किसी की भी प्रैक्टिस नहीं चलती। जमशेद कियानी नाम है और एक लंगड़ा आदमी है। उसका ताकुब नहीं कर सका था क्योंकि जमशेद कियानी मुझे उससे ज्यादा अहम मालूम होता है। आखिर इमरान वहाँ क्या कर रहा है? अब उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, वरना हो सकता है वो खेल ही बिगाड़ दे। क्या मतलब? हमारे मामलात में पहले ही से उसकी टांग अड़ी रहती है। मेरा ख्याल है कि हम उसी के मातहत काम कर रहे हैं। यार, अब तो खुलने लगी है ये बात। क्यों? वो सिर्फ एक एजेंट है। आखिर X2 हम में से किसी को इंचार्ज क्यों नहीं बनाता? खत्म करो, खावर जमाई लेकर बोला। नहीं, मैं बड़ी शिद्दत से बोर होता हूँ अक्सर इस मसले पर, नौमानी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। साजिदा हबीब को जोसेफ की हरकतों पर गुस्सा नहीं आता था, अलबत्ता सफदर पर हंसी आती थी जब वो जोसेफ पर दांत पीसता था। जोसेफ का मामूल था कि जब तक सफदर कमरे में रहता, वो बाहर पहरे की सिपाही की तरह एट एज खड़ा नजर आता, और उसकी अदम मौजूदगी में साजिदा हबीब के साथ साए की तरह लगा रहता। इस वक्त भी सफदर कहीं बाहर गया था, साजिदा तन्हा थी और जोसेफ उससे थोड़े ही फासले पर बैठा खला में घूरे जा रहा था। साजिदा स्वेटर बुन रही थी। जोसेफ कभी कभी उसके हाथों को गौर से देखने लगता। एक बार साजिदा ने भी उसे अपने हाथों की तरफ घूरते हुए देख लिया और हंसकर बोली, कोई बदरू तो नहीं मंडला रही इन हाथों पर? मैं ये नहीं देख रहा, जोसेफ भर्राई हुई आवाज में बोला। फिर क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं मिस, अपना काम करो। तुम आखिर इतने चिड़चिड़े और कटखन्ने क्यों हो? मेरे हिस्से की खुश मिजाजी भी बहुत ही को मिल गई है। अच्छा, मुझसे अपने बारे में, अपने बॉस के बारे में बातें करो। साजिदा ने ऊन का गोला और सराहियाँ एक तरफ रखते हुए कहा, क्या बातें करूं? तुम उसके सामने भीगी बिल्ली बने रहते हो, क्यों? आखिर अक्सर इंतहाई खुश मिजाज आदमियों को भी गुस्सा आ जाता है। तुम उससे डरते हो? साजिदा ने हैरत से पूछा। वो डरने की ही की चीज है। अरे जाओ, साजिदा हंस पड़ी। यकीन करो, उसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जानने वालों में से एक तुम भी हो। हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें। अच्छा बताओ, उसकी नजरों में किसी की अहमियत भी है या नहीं? उनकी नजर में खुद उनकी भी कोई अहमियत नहीं। वो खुद को अहमक क्यों पोज करता है? मैं नहीं जानता, जोसेफ ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। फिर क्या जानते हो? कुछ भी नहीं, खामोश रहो या कोई और बात करो। दफातन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जोसेफ ने उठकर दरवाजे के करीब से हुर्राई हुई आवाज में पूछा, कौन है? वेटर नंबर 11 जनाब, बाहर से आवाज आई। क्या चाहते हो? मुझे बुलाया गया है जनाब। किसने बुलाया है? इसी कमरे से किसी ने फोन किया था। भाग जाओ, किसी ने नहीं बुलाया। बहुत बेहतर जनाब। और फिर जोसेफ कदमों की दूर होती हुई चाप की तरफ कान लगाए रहा। यहाँ से तो किसी ने भी फोन नहीं किया था, मुझे बाहर ही ठहरना चाहिए। जोसेफ सर हिलाकर बोला, क्यों? क्या तुम किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हो? हम यहाँ तफरीहन तो नहीं आए, बॉस ने किसी मकसद ही के तहत भेजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी कहानी क्या है। मेरी कोई कहानी नहीं है। हो भी तो मुझे क्या? जोसेफ ने लापरवाही से शानों की को जुम्बिश दी। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला, लेकिन कबल इसके के मामले की नौयत समझ में आती, सर पर कयामत गुजर गई। दो वजनी मोगरियाल यके बाद दीगरे इतनी तेजी से सर पर पड़ी थी कि वो एक की भी चोट न बचा सका। हमला आवर दरवाजे की दोनों जानिब दीवार से चिपके खड़े थे। जोसेफ किसी किस्म की आवाज निकाले बगैर बेहिसो हरकत हो गया। दरवाजे के दोनों पार्ट खुल गए थे और साजिदा हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। हमला आवरों में से एक ने उससे कहा, मेरा दाहिना हाथ कोट की जेब में है, उंगली बेआवाज रिवॉल्वर के ट्रिगर पर है। बाहर निकलो और बाएं जानिब चलती रहो, लेकिन खामोश चलो। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। बाएं तरफ चलो, फिर कहा गया। पूरी राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो जल्द ही तीसरी मंजिल के जीने तय कर रहे थे। अगर कोई राह में भी मिल जाता तो उसे जरा बराबर भी किसी किस्म का शुबा ना हो पाता, क्योंकि साजिदा उन दोनों से काफी फासले पर चलती रही थी। ये सोचकर उसका दिल डूब रहा था कि वो बिलाखिर पहचान ली गई। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर धमकी देने वाला उससे किसी कदर करीब होता हुआ बोला, कमरा नंबर 58 में चलो। वो खुले हुए दरवाजे में मुड़ गई। उसके पीछे वो दोनों भी कमरे में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया गया। अब धमकी देने वाली की जेब से रिवॉल्वर भी निकल आया था। उसने उसका रुख साजिदा की तरफ किया ही था कि दूसरा बोल उठा, ठहरो, फायर ना करना। क्यों? पहला गुर्राया, पता नहीं ये साजिदा हबीब है भी या नहीं। वही है, तस्वीर निकालो और आंखों की बनावट मिला लो। महज नाक और दहाने के प्लास्टिक मेकअप से क्या होता है? पेशानी की बनावट देखो। कुछ भी सही, इस तरह मार डालने से क्या फायदा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया, जिंदा रखकर ही क्या करेंगे? अहमक आदमी, इसके अलावा और कौन इमरान का पता बता सकेगा? नॉवेल बेबाकों की तलाश का बकिया हिस्सा अगले पार्ट 6 में समाप्त फरमाइए।